लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पुण्य बृहस्पतिवार पर एक चिंतन। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय एक्का।
पास्कोत्सव की रीत यरूशलम में ही सदा, उत्सव परम पुनीत सब करते संपन्न थे। प्रभु ने भी निज शिष्यों के संग हाँ यरूशलम प्रस्थान किया। पास्का भोजन के पहले तब यीशु ने उनको ज्ञान दिया। पेतुस चरणों में बैठ गए, यीशु झारी में जल भर कर शिष्यों के चरण पखारेंगे। अब यीशु सबके गुरु होकर शिष्यों की आनाकानी पर प्रभु ने उनको मजबूर किया। है कौन बड़ा सबसे हम में, उनकी शंका को दूर किया।
आज पुण्य बृहस्पतिवार है, पास्का महापर्व यानी ईस्टर रविवार से पूर्व पड़ने वाला बृहस्पतिवार। प्रचुर प्रतीकों और पवित्र परंपराओं से समृद्ध चालीसा काल संबंधी उदार कार्य, उपवास और प्रार्थना के समापन तथा पास्काई दिवस त्रय की शुरुआत को यह चिन्हित करता है। आज के प्रसारण में इसी पर हमारा चिंतन केंद्रित होगा।
कलवारी पर्वत के ऊपर था क्रूस मरण प्रभु ने पाया। उस दुर्गम स्थल पर प्रभुवर ने बलिदान अनोखा दिखलाया। जो क्रूस अपावन था अब तक वो धन्य हुआ, अब शुचि हो गए। पूजा का लक्ष्य बना अब से प्रभु के आलिंगन को पाकर।
यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की याद में संपूर्ण विश्व में ईस्टर अथवा पास्का महापर्व मनाया जाता है। ख्रिस्तीय धर्मानुयायियों का यह सर्वाधिक महान धार्मिक पर्व है, जिससे पूर्व 40 दिन तक ख्रिस्तीय विश्वासी त्याग, तपस्या, उपवास, परहेज और उदारता के कार्यों के माध्यम से मन परिवर्तन के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। यह आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पास्का महापर्व से पूर्व पड़ने वाले सप्ताह में यीशु के दुखभोग और उससे संबंधित घटनाओं के स्मरणार्थ संपन्न विविध धर्म विधियों से अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। पुण्य बृहस्पतिवार प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त रूप में पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना का महान समारोह है। इस दिन हम यीशु के दुखभोग और उनके पुनरुत्थान की घटनाओं पर गहन मनन चिंतन करते हैं। यह वह पवित्र दिवस है जब हम मनुष्य जाति के प्रति ईश्वर के बिला शर्त, निस्वार्थ और एकजुट करने वाले प्रेम के उपहार पर विचार करने हेतु आकर्षित होते हैं। ईश्वर के असीम प्रेम में प्रत्येक मानव के दिल को मजबूत करने की शक्ति है। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करते हैं कि हम परस्पर प्रेम हेतु ईश्वर की बुलाहट का प्रत्युत्तर दें। ईश्वर हमारी कमजोरियों और खामियों के बावजूद हमें गले लगाते। पुण्य बृहस्पतिवार ईश्वर के इसी अनुग्रह पर चिंतन का पवित्र दिवस है। इस पवित्र दिन आइए हम सब मिलकर यूरोप की दहलीज पर यूक्रेन में, इजराइल और गाजा में तथा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जारी युद्धों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें रोग से पीड़ितों के लिए, उनके दुखी परिवारों के लिए, ताकि वे निरंतर प्रभु ईश्वर की करुणा में सांत्वना का अनुभव कर सकें। हम प्रार्थना करें क्योंकि प्रार्थना मानव व्यक्ति को मन परिवर्तन की ओर अभिमुख करती है। प्रार्थना उस सब का विरोध करती है जो हमारे इस विश्व में गलत है। यह हमें ईश्वर के दृष्टिकोण से परिचित कराती और सृष्टि में व्याप्त अन्याय को रोकने में मदद करती है। प्रार्थना अन्यों के प्रति प्रेम और करुणा भर देती, न्याय की स्थापना हेतु हमें प्रेरित करती और यीशु मसीह के नाम पर भाईचारे, मेल मिलाप और शांति हेतु एक नई प्रतिबद्धता हेतु आमंत्रित करती है।
प्रार्थना में जो कुछ मांगा
श्रोताओ, पुण्य सप्ताह यीशु मसीह की पीड़ा, उनके साथ हुए विश्वासघात और उनकी गिरफ्तारी, उपहासी और छलपूर्ण मुकदमे, रोमी सैनिकों की आकस्मिक क्रूरता और सूली तक मसीह की एकाकी यात्रा से संबंधित बाइबल के पाठों पर ध्यान केंद्रित करने का हमसे आग्रह करता है। यीशु का दुखभोग हमें ख्रीस्त द्वारा सहे गए कष्टों की गाथा के माध्यम से मानवता के कष्टों के प्रति जागरूक कराएगी। संत पेत्रुस के शब्दों में, यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उनके घावों से हम चंगे हुए हैं। क्रूस पर चढ़े यीशु मसीह के शब्द, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, विश्व में जारी 60 से अधिक युद्धों की शोक संतप्त भूमि के लोगों को तथा यूक्रेन, इसराइल और गाजा में गूंज उठेंगे और एक नई सुबह के लिए उनमें आशा का संचार करेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अपमान और तिरस्कार के विलाप के बाद तीसरे दिन यीशु ख्रीस्त कब्र से जी उठे थे। यीशु का दीदार करने वाले गवाह कांप गए थे, क्योंकि यीशु के पुनरुत्थान में मृत्यु से जीवन को और निराशा से आशा को ईश्वर ने प्रस्फुटित किया। आशा से परिपूर्ण इन्हीं शब्दों से हम सब मिलकर पुण्य सप्ताह के लिए निर्धारित बाइबल धर्म ग्रंथ के पाठों पर चिंतन करें। प्रभु ईश्वर से हमारी अर्थ याचना है कि युद्धों, रोगों और जीवन की विविध कठिनाइयों के बावजूद धर्म ग्रंथ के पाठों पर चिंतन हम सबके लिए चंगाई, आत्मिक बल और सांत्वना का स्रोत सिद्ध हो। यीशु के पुनरुत्थान महापर्व से पूर्व पड़ने वाला बृहस्पतिवार यहूदी जाति के पास्का भोज का पावन दिवस है। यहूदी जाति में जन्म लेने के कारण यीशु मसीह ने भी इस दिन अपने शिष्यों के साथ भोजन कर इस अवसर पर शिष्यों के पैर धोए तथा संपूर्ण विश्व के समक्ष युग युगांतर के लिए सच्चे बड़प्पन की एक नई और क्रांतिकारी शिक्षा प्रस्तुत की। फिर पुण्य बृहस्पतिवार पवित्र यूखरिस्तीय संस्कार और पौरोहित्य संस्कार की स्थापना की स्मृति का भी पावन दिवस है। रोटी और अंगूरी लेकर यीशु ने प्रार्थना पढ़ी और ईश्वर को अर्पित भेंट को अपने देह और रक्त रूप में शिष्यों को बांटकर यूखरिस्तीय संस्कार की स्थापना की। पौरोहित्य संस्कार को उन्होंने वंशगत परंपरा से मुक्त कर सभी जातियों और वंशों के लिए पौरोहित्य का द्वार खोल दिया। नए व्यवस्थान के याजक पशु बलि नहीं अपितु रक्त विहीन विधि से ख्रीस्त के बलिदान को दोहराते और उनके मुक्ति कार्य को जारी रखते हैं। संत पॉल के अनुसार,
जब जब वे यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, वे प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं।
पास्का का अर्थ है पार होना। नबी मूसा के काल में मिस्र की दास्ता से मुक्त होकर उसी रात प्रतिज्ञात देश की ओर निर्गमन की याद करते हुए यहूदी जाति पास्का पर्व मनाती रही थी। उन्हें ईश्वर से आदेश मिला था कि मुक्ति की रात को वे अनंत काल तक पर्व घोषित करें, क्योंकि इसी रात ईश्वर मिस्र को दंडित कर इसराइलियों को मुक्त करने वाले थे। मिस्र की दासता से मुक्ति की पूर्व बेला में यहूदियों ने पास्का मेमना खाया तथा प्रभु के आदेश अनुसार मेमने के रक्त से अपने घरों के दरवाजों को पोत दिया ताकि उनके पहलौठे पुत्रों की प्राण रक्षा हो सके। बाइबल की इस घटना का विवरण हमें प्राचीन व्यवस्थान के निर्गमन ग्रंथ के 12वें अध्याय में मिलता है। यह इस प्रकार है।
प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, इसराइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों, तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इसराइली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखटों पर उसका लोहू पोत दिया जाए। उसी रात बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भूना हुआ मांस खाया जाएगा। और 12 से लेकर 14 तक के पदों में लिखा है, उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश के मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोहू पोत कर दिखा दोगी कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लोहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे।
इस प्रकार मुक्ति की पूर्व संध्या यहूदियों ने पास्का मेमना खाया तथा मेमने के रक्त को अपने घरों की चौखटों पर पोत कर अपनी अलग पहचान बनाई। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उनकी रक्षा की और मिस्र के फराउन को उसके अहंकार के लिए दंडित किया। प्रभु ईश्वर के प्रति कृतज्ञ यहूदी जाति प्रतिवर्ष पास्का पर्व मनाती रही। चुनी हुई प्रजा में जन्म लेने के कारण यीशु भी पास्का पर्व के सभी रीति रिवाजों का अनुपालन करते रहे, किंतु अपनी प्रेरिताई के तीसरे और अंतिम वर्ष उन्होंने यहूदियों के पास्का को एक नया अर्थ प्रदान कर दिया। प्राचीन व्यवस्थान में मेमने का रक्त मिस्र की दासता से मुक्ति का प्रतीक बना, जबकि नवीन व्यवस्थान में यीशु ख्रीस्त स्वयं बलि का मेमना बने और उनका रक्त मानव जाति की मुक्ति का प्रतीक। श्रोताओ, प्राचीन व्यवस्थान में बलिदानों का उद्देश्य ईश्वर के कोप को शांत करना तथा उनके अनुग्रह की कामना करना होता था, किंतु दुर्भाग्यवश कालांतर में मनुष्य बलिदानों के मूल उद्देश्य को भुला बैठा। वस्तुतः यीशु के बलिदान के साथ ही प्राचीन काल में प्रचलित बलिदानों की निरर्थकता समाप्त हुई। नवीन पास्का के साथ ही उन्होंने प्राचीन विधान को पूर्ण किया और नूतन विधान की स्थापना की। इस पर उन्होंने अपने रक्त की मुहर लगाई ताकि चिरकाल तक यह हम सब के लिए मुक्ति का स्रोत बना रहे। यीशु मसीह के पास्का भोज के विषय में संत पॉल लिखते हैं,
उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है।
इन रहस्यपूर्ण शब्दों से यीशु ने प्राचीन विधान को नवीन विधान में परिवर्तित कर दिया तथा यूखरिस्तीय संस्कार की स्थापना की। पास्का भोज के समय ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोकर संपूर्ण मानव जाति के समक्ष दीनता, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया। यहूदी जाति के पास्का भोज के समय घटी इस क्रांतिकारी घटना में ही ख्रिस्तीय धर्म का सार निहित है, जिसके विषय में संत योहन लिखते हैं,
उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोछने लगे और फिर उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए।
श्रोताओ, आज भी यह घटना अनोखी और विचित्र प्रतीत होती है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोकर संपूर्ण मानव जाति के समक्ष निस्वार्थ सेवा की अनोखी मिसाल प्रस्तुत की। इस विलक्षण घटना का अनुसरण कर ही अब कैथलिक कलीसिया के धर्माध्यक्ष और पुरोहित प्रतिवर्ष पुण्य बृहस्पतिवार की धर्म विधि के दौरान सेवा प्रेम के प्रतीकवश वयोवृद्धों के पैर धोते तथा समस्त विश्वासियों को जरूरतमंद भाइयों की सेवा के लिए आमंत्रित करते हैं। येसु के आगमन तक मनुष्य ईश्वर से भय खाता रहा था, किंतु येसु मसीह ने अपने जीवन और कार्यों द्वारा ईश्वर एवं मानव के बीच विद्यमान पिता और संतान के घनिष्ठ संबंध की प्रकाशना की। ईश्वर परम प्रेम है, यह आश्वासन भी मनुष्य को येसु मसीह से मिला। येसु ख्रीस्त के मृत्यु बलिदान में हमें पिता ईश्वर के असीम प्रेम का ठोस प्रमाण मिला। इसीलिए प्रेम पर उनकी शिक्षा को याद करना तथा उसका पालन करना हमारा धर्म है। पास्का भोज के बाद शिष्यों से विदा लेते समय येसु का यह आदेश कि जैसा मैंने तुम लोगों से प्यार किया है वैसा तुम भी करो, युग युगांतर तक मानव जाति के लिए उनका गुरु मंत्र बनकर रह गया है, जिसमें भागीदार बनने के लिए हम सब आमंत्रित हैं।
सुनो मेरा उपदेश नया,
और इसी गीत के साथ हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
धोना एक दूजे के पांव सदा,
बोले प्रभु
जैसा के मैंने किया,
बोले प्रभु
आपस में प्रेम के प्रतीक तुम बने रहो स्वर्ग।